ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवतम पांचवा स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 21। एतत् एव हि देवाः गायन्ति अहो अमीशां किम् अकारि। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशां किमकारि शोभनम्। प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः। ये जन्म लब्धं ऋषुभारताजिरे मुकुन्द सेवोपयिकं स्पृहाहीनः। एतत् अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य का जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं। इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा, अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे हुए हैं। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 9वां अध्याय में इन तथ्यों का विशद व्याख्या है। भारत भूमि ते होइलो जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। जिसने भारत देश में मनुष्य का जन्म लिया है उसे अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। भारतवर्ष में भक्ति करने की अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ के अनेक आचार्यों ने अपने अनुभवों का योगदान किया है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात प्रकट होकर भारतवर्ष के वासियों को यह शिक्षा दी कि किस प्रकार परमार्थ जीवन में आगे बढ़ना और भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। सभी प्रकार से भारत देश विशिष्ट है, जहां भक्ति की सरलता में समझकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यदि कोई भक्ति में सफलता प्राप्त करके विश्व के अन्य भागों में भक्ति का उपदेश देता है तो उससे विश्वभर के लोग लाभ उठाते हैं। अनुवाद दोहराइएगा, शायद हमें आश्चर्य होगा कि देवतागण इस तरह से आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। देखिए यह संसार कैसा है, व्यक्ति कहीं भी संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा दूसरी परिस्थिति हर एक व्यक्ति को अच्छी लगती है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हरियाली दूसरे के बगीचे में ज्यादा अच्छी लगती है। हमें हमेशा लगता है कि जो हमारी परिस्थिति है उससे बढ़कर उससे अच्छी परिस्थिति दूसरों की है, ऐसे हमें लगता है। कितना भी सौभाग्य हमारा क्यों ना हो, हमें लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। कितना भी धन हमारे पास क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि दूसरों के पास ज्यादा धन है हमसे। इस तरह से व्यक्ति इस भौतिक जगत में कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। यहां पर हम देखते हैं कि लोग अमेरिका जाने के लिए बहुत आतुर हैं, है ना? अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है सभी ने, बहुत सारे लोग। बंबई में अमेरिकी दूतावास के सामने हर रोज बड़ी लाइन लग जाती है और पिछले दिन के रात्रि से लाइन लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जब दूतावास खुलेगा तो फिर सभी लोग अपने अपने वीजा के दरख्वास्त लेके आते हैं, तो सभी लोग इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। उनको लगता है कि हम एक बार अमेरिका चले जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्वर्ग के समान है। उसी तरह से भगवद गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कर्मकांड के पद्धतियों को यहां के लोग स्वीकार करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चितः वेदवादतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है लोगों को कर्म कांड करने से, क्योंकि उनको लगता है कि स्वर्ग लोक एक ऐसा स्थान है जहां हमको बहुत भोग मिलेगा, हमको बहुत सुख मिलेगा, वो हमारे लिए एक गंतव्य स्थान बन गया है, इसलिए लोग कर्मकांड करते हैं। तो पृथ्वी लोक के निवासी स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भोग के साधन ज्यादा बढ़े हुए हैं। और भारत के लोग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भोग के साधन भारत की अपेक्षा ज्यादा है। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। भागवत में बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में तीन तरह के स्वर्ग होते हैं। जिस जगह को हम स्वर्ग कहते हैं साधारणतः, वो तो दिव्य स्वर्ग है, जहां पर इंद्रदेव और अन्य देवी देवता निवास करते हैं, वो दिव्य स्वर्ग कहलाता है। भू भुवस्वः, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, तीन भुवन, त्रिभुवन। लेकिन और भी दो तरह के स्वर्ग कहे जाते हैं। असली स्वर्ग तो यही दिव्य स्वर्ग है इस ब्रह्मांड के भीतर, परंतु एक और स्वर्ग है बिल स्वर्ग, मतलब इस भूलोक या पृथ्वी लोक के निम्न श्रेणी के लोक, जैसे अतल, वितल, सुतल इत्यादि, ये बिल स्वर्ग कहलाते हैं। यहां भी भोग के साधन बड़े श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं, जहां पर उदाहरणार्थ जहां बलि महाराज निवास करते हैं, बहुत सारे भोग के साधन है वहां पर। असुरों के स्थानों में भी बहुत सारा भोग मिलता है। और पृथ्वी लोक के ऊपर भी एक स्वर्ग है, इसको भौम स्वर्ग कहते हैं। ये भौम स्वर्ग मतलब इस पृथ्वी लोक में ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल स्वर्ग की तरह वातावरण है, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, बहुत सारे भोग के साधन उपलब्ध वहां पर हैं, आराम का जीवन है, जीवन का संघर्ष इतना कठिन नहीं होता। प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे कई स्वर्ग हम देख सकते हैं। आधुनिक भूगोल आपने पढ़ा होगा स्कूल में, हवाई, हवाई मतलब हवा नहीं, हवाई नाम का जगह है। और यहां पर बताया जाता है कि इतना सब मनोरम वातावरण है कि जो आदमी वहां जाएगा वो वापस आने की इच्छा नहीं करेगा, भोग ही भोग वहां। सुंदर है सब कुछ, समुद्र, समुद्र की लहरें भी इतनी तीव्र नहीं है, खतरनाक नहीं है। वहां जाके समुद्र में स्नान कीजिए, जल क्रीड़ा कीजिए, वहां के जो रेती है वो भी इतनी मुलायम है, बस वहां आराम से बैठकर आप भोग कर सकते हैं। साथ साथ में इतने सारे सुंदर सुंदर वृक्ष, फूल, सब जगह वृक्ष और ये सुंदर फूलों के का सुगंध दिखाई पड़ता है, हम सूंघ सकते हैं। और जगह जगह फल, यहां फल नहीं दिखाई पड़ते, अगर फल हैं भी 5 मिनट में गायब हो जाएंगे। लेकिन वहां पर इतने फल दिखाई पड़ते हैं कि कोई भी आदमी जाकर फल उठाकर खा सकता है। और सभी लोग अमीर हैं तो किसी को चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। जगह जगह ऐसे भरे पड़े हैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वो फलों के वृक्ष, जहां जो चाहे वहां उठा सकता है खा सकता है। वातावरण भी ठंडी ज्यादा नहीं है, गर्मी ज्यादा नहीं है, बारिश ज्यादा नहीं कम नहीं, घर भी सुंदर, सब कुछ हरियाली ही हरियाली सब जगह। इसलिए जब कोई छुट्टी लेना चाहते हैं, अमेरिका में भोग करना चाहते हैं, तो वो हवाई चले जाते हैं, या ऐसे कई स्थान हैं। या और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप, स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं अलग अलग तरह की क्रीड़ा करने के लिए। दूसरे शब्दों में भोग की ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है उन लोगों के लिए जो भोग करना चाहते हैं। लेकिन इन सब भोगों से श्रेष्ठ है दिव्य स्वर्ग, जिसमें ऐसे भोग के साधन उपलब्ध हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां के जो खाने के पदार्थ हैं इतने मीठे, इतने स्वादिष्ट कि उसके सामने यहां का जो अच्छे से अच्छा पदार्थ है वो मिट्टी के बराबर है। हर तरह का भोग, जो भी भोग यहां पर पृथ्वी लोक में उपलब्ध है, कल्पना कीजिए उसके हजारों गुना ज्यादा भोग वहां स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग में उपलब्ध है। अब बैठने के कुर्सियां, सोने के लिए जो अपने तकिया हैं, अपने बिस्तर हैं, जो पहनने के कपड़े हैं, गहने हैं, खाने के पदार्थ हैं, सब कुछ, हर एक चीज वहां श्रेष्ठ है। इसलिए वहां के देवताएं ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भोग के साधन बहुत ज्यादा होते हैं तो आदमी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। दूसरी ओर जब पीड़ा, भौतिक पीड़ा बहुत हो जाती है, अधिक हो जाती है, ऐसे अवस्था में भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। केवल बीच वाले स्तर में, जैसे हम सब हैं, ना ज्यादा अमीर हैं ना ज्यादा गरीब हैं, है ना, जिसको भोजन नहीं मिलता दिन का वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, और जिसके पास बहुत है धन उसके लिए भी भगवान की भक्ति करना कठिन है। कुंती महारानी भी ऐसे ही प्रार्थना करती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मदह पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर, कि हे कृष्ण, जिसके पास ऊंचा जन्म है, बहुत सारा ऐश्वर्य धन है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत शिक्षित है, ऐसे व्यक्तियों को एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है, मदह, और ऐसे नशीली अवस्था में वो निस्सहाय भावना से आपके शरण में नहीं आ सकते हैं। तो पृथ्वी लोक का स्थान बड़ा अद्भुत है, विचित्र है, या विशेष है कह सकते हैं, विचित्र नहीं, विशेष है, क्योंकि ये नरक लोक और स्वर्ग लोक के बीच का लोक है। आप नरक में जाएंगे तो इतनी पीड़ा है वहां पर कि वहां कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। स्वर्ग लोक में जाएंगे इतना भोग है कि वहां भी कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। हम पृथ्वी लोक के निवासी बीच में हैं, कभी कभी नारकीय दुख का अनुभव करते हैं, कभी कभी स्वर्गीय भोग का अनुभव करते हैं, मतलब दोनों कम मात्रा में स्वर्ग और नरक की तुलना से। तो इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ कर पाते हैं, इसलिए पृथ्वी लोक ये भक्ति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है। और पृथ्वी लोक में ये भारतवर्ष भक्ति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यहां पर भी कम से कम अब तक तो भोग के साधन इतने अच्छे नहीं बने हैं। आप में से जो विदेश गए हैं, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि वहां तो सब कुछ चमत्कार है, सब कुछ चलता है, कभी ऐसे लाइट ऑफ, पावर ऑफ नहीं होता, सब कुछ, टेलीफोन हमेशा चलते हैं, गाड़ियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घर में सब कुछ ठीक चलता है, आपको जो चाहिए वो उपलब्ध है, केवल फोन उठाइए, सब कुछ ठीक ठाक। सारे भोग के साधन फोन कॉल पे उपलब्ध हैं। जो आपको चाहिए खाने के पदार्थ अच्छे अच्छे अच्छे, आप वहां पे बाजारों में जाइए, बाजार तो शहर के समान है। यहां का आदमी चले जाएगा तो चकाचौंध हो जाएगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाजार, अट्टालिकाएं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बाजार, केवल बाजार उसमें, और आदमी वहां चले जाए तो पागल हो जाता है। इतने नाना प्रकार की चीजें आपके सामने है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या चुन ले हम। अगर आपको एक कोई चीज चाहिए, एक कमीज चाहिए खरीदने के लिए, तो आप जाएंगे तो लाखों लाखों कमीज, 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 सब जगह कमीज। इतने सारे चीजें उपलब्ध है व्यक्ति के लिए, कोई कमी नहीं है हर दृष्टि से। अगर गाड़ियां चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जूते चाहिए, तो आदमी पागल हो जाएगा, जूता नहीं चुन पाएगा। इतने सारे जूते हैं, तरह तरह के जूते, दुनिया भर के, सर से चीन में बने हुए, यूरोप में बने हुए, अमेरिका में बने हुए। और ऐसे बड़े शहर हैं, इनको शॉपिंग मॉल कहते हैं, बड़े बड़े शहर ही हैं उसमें। और अगर आदमी को अपना सारा धन खोना है तो उसके अंदर घुसना चाहिए। और वो जानते हैं, ऐसे वो दक्ष हैं, निपुण हैं इस चीज में, ऐसे उन्होंने व्यवस्था की है कि आदमी पैसे खर्च किए बिना इसके बाहर नहीं जाएगा, आदमी जेब खाली करके ही बाहर जाएगा। इतना आकर्षण है इन शॉपिंग मॉल्स में, सुंदर ढंग से सजाया हुआ है, और वो पैकेजिंग जो है, वो जिस पैकेट में वो डालते हैं, ऐसे सुंदर ढंग से वो करते हैं, तो आदमी के लिए सब कुछ उपलब्ध है वहां पर, रेडीमेड भोग, कोई कठिनाई नहीं उसके लिए। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, अरे टेलीफोन नहीं चलता, पावर कट हो जाता है, गाड़ियां बीच में बंद हो जाती हैं, और जो चाहिए वो समय पर नहीं मिलता है, कितने तकलीफें हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, सब कुछ जब ठीक ठाक काम करने लगता है तो फिर हम भोग नहीं कर सकते, हम भोग बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। जब हम अच्छी तरह से, जब चीजें नहीं चलती हैं, तो उस समय हम सोचे, अरे भोग में तो बहुत हमारा मजा किरकिरा हो गया, ये तो अच्छा नहीं है, तो उस समय थोड़ा बहुत हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तब हमारे लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। स्वर्ग लोक में ऐसा है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अमेरिका में ऐसा है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। सुतल अतल वितल में ऐसा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पृथ्वी लोक में कुछ गड़बड़ ज्यादा है, और पृथ्वी लोक में भी देखा जाए तो भारतवर्ष में गड़बड़ सबसे ज्यादा है। इसलिए भारतवर्ष में सबसे अनुकूल परिस्थिति है भगवान का शरण लेने के लिए। वैसे अन्य जगहों में भी त्रिविध ताप बहुत ज्यादा है, जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे, वहां कितना कष्ट है लोगों को, बहुत ज्यादा कष्ट, उनको खाने की कमी है, पीने की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट है उनके लिए भी। परंतु भारतवर्ष और उन देशों में अंतर क्या है? हालांकि कष्ट दोनों देशों में है, भारतवर्ष में आध्यात्मिक संस्कृति है। भारतवर्ष में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, बहुत सारे पावन स्थल हैं, पवित्र पहाड़ हैं, बहुत ये सारी भूमि जो है यह पावन भूमि है। इसलिए यहां का जो व्यक्ति है, यहां भारतवर्ष का जो निवासी है, वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बचपन से ही उसको ये आध्यात्मिक संस्कृति का लाभ मिलता है। बचपन से ही उसने सुना है गंगा के बारे में, वृंदावन के बारे में, कृष्ण, राम, गोवर्धन लीला, बचपन से बच्चे बच्चे भी सुन लेते हैं। ये लाभ किसी दूसरे देश में नहीं मिलता है। इसलिए ये भूमि जो है, ये साधारण भूमि नहीं है, ये बहुत विशेष है यहां की आध्यात्मिक संस्कृति की वजह से। आजकल भारत ये प्रयत्न कर रहा है कि वो प्रसिद्ध हो जाए सारे विश्व में अपनी जो है वो फौजी बल के ऊपर, या तो फिर अपने कंप्यूटर के दक्षता के ऊपर, या तो अपने खेल क्रीड़ा में क्रिकेट खेलने में वर्ल्ड चैंपियन होना चाहता है। तो इस तरह से भारत आजकल अलग अलग क्षेत्रों में श्रेष्ठ होने का प्रयास कर रहा है, या तो कोई औद्योगिक क्षेत्र में आगे होना चाहते हैं। लेकिन भारत इसके लिए बना हुआ नहीं है। भारत किसके लिए बना हुआ है? भारत आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए बना हुआ है। तो भारतवासी, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करें और अपना जीवन सफल बनाए, दूसरों को भी ये आध्यात्मिक ज्ञान दे दें। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसिद्ध श्लोक है उसको दोहराते हैं। भारत भूमि ते जन्म होइ लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका जन्म भारत वर्ष में होता है, भारत भूमि ते जन्म होइ लजार, इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी, उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। कृष्ण भक्ति स्वीकार करके, आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करके, और ऐसा करके क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, फिर दूसरों का उपकार, दूसरों का भलाई करना चाहिए, दूसरों को कृष्ण भक्ति देनी चाहिए। इसलिए ये भारतवर्ष में कठिनाई आए भी तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की विशेष योजना है। भारतवर्ष में कठिनाई आने के लिए दो कारण है। हम लोग हमेशा यहां पे शिकायत करते रहते हैं ना, भारत में ये नहीं है, वो नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, कितने सारे कठिनाइयां हैं लोगों को। इनके लिए दो कारण। एक कारण ये है कि भगवान जानबूझकर यहां कष्ट देते हैं हमको उनके भक्ति मार्ग में लाने के लिए, क्योंकि ज्यादा भोग हो जाए तो उनको भूल जाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है भगवान की भक्ति करने के लिए और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये दंड दे रहे हैं भगवान इतना कष्ट देकर हमारे देश में। जिनके ऊपर ज्यादा अपेक्षा रखी जाती है, जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, वो लोग अगर अपना काम नहीं करें तो दंड उनको ज्यादा मिलता है। जैसे कोई छोटा आदमी, एक चपरासी, अगर कुछ 50 रुपए घूस ले ले तो दंड मिलता है, पर कम दंड मिलता है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑफिसर, अधिकारी व्यक्ति घूस ले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये गुनाह बड़ा माना जाता है। तो ठीक उसी तरह से आजकल सारे कलयुग के प्रभाव से सारे पृथ्वी लोक में लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका के जंगल के बीच में रहने वाला आदमी अगर एक पशु को मार के खा रहा है, वो तो अज्ञानी है, तो पाप तो है उसके हाथों से, लेकिन फिर भी उसको इतना दंड नहीं मिलेगा जितना कि भारत के लोगों को मिलेगा ऐसा करने से। क्योंकि भारत के लोगों के जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति है, उनके पास ज्ञान है, इतना सब होते हुए अगर वो आदमी पाप करे तो उसको डबल दंड मिलेगा। एक छोटा बच्चा अगर कुछ करे तो गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन एक बड़ा आदमी वही काम करे, अगर वो गलती है, चोरी वगैरह है, तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भारत के लोग बड़े माने जाते हैं शास्त्रों में, क्योंकि यहां पे ये पावन भूमि है, तपोभूमि है। और ऐसा होते हुए अगर हम लोग आध्यात्मिक संस्कृति को ठुकरा दें, इसको त्याग दें, तो फिर ज्यादा दंड मिलता है। तो जितने भी समस्याएं यहां पर हैं इस भारतवर्ष में आज, वो केवल इन दो कारणों के लिए हैं। इसलिए भारत के निवासियों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना जीवन सबसे पहले सुधारें, धर्म का पालन करें, कृष्ण भक्ति करें, और फिर जगह जगह इसका प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भारत और जो विदेश है, जो पश्चिम देश है, उनका सहयोग किस तरह से होना चाहिए। जैसे एक अंधे आदमी और एक लंगड़े आदमी का होना चाहिए। जो अंधा आदमी है वो जानता नहीं है कि मुझे कहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, उसकी दृष्टि पर ठीक नहीं है, इसलिए खतरा है उसके लिए। चलते चलते वो खड्डे में गिर सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है उसके लिए। लेकिन अगर वो किसी ऐसे एक आदमी के कंधे पर बैठ जाए जहां या ऐसे उसको मार्गदर्शन मिले किसी व्यक्ति से जिसकी आंखें हैं, जो देख सकता है, तो वो अच्छी तरह से चल सकता है। भारत की परिस्थिति अलग है। भारत की परिस्थिति है वो एक लंगड़े आदमी की तरह है, जिसकी आंखें अच्छी हैं, दृष्टि अच्छी है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। और जो पश्चिम देश हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधे हैं लेकिन शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट है। तो अगर जो लंगड़ा आदमी है जो देख सकता है वो अंधे आदमी के कंधे पर बैठ जाए और उसको मार्गदर्शन दे, सीधा चलो, बाएं चलो, दाहिने चलो, रुक जाओ, यहां खतरा है, तो फिर दोनों ठीक ठाक चल पाएंगे। जो अंधा आदमी है हृष्ट पुष्ट, तो अच्छी तरह से आगे चल पाएगा, लेकिन वो देख नहीं पाता, उसकी दृष्टि कौन देगा? वो दूसरा आदमी जो कमजोर है शारीरिक दृष्टि से लेकिन जिसकी आंखें तेज हैं। तो भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति होने की वजह से आध्यात्मिक दृष्टि तेज है भारत की। तो भारत के लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सारे पृथ्वी के लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें, क्योंकि बाकी सारा जो जगत है वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधकार में है। अंधकार से बाहर निकालने के लिए भारतवर्ष बनाया गया है। लेकिन भारतवर्ष भी दूसरे लोगों की तरह पीछे पीछे जाए, खेल क्रीड़ा में पहला नंबर चाहिए, हमको औद्योगिक दृष्टि से पहले होना है, आर्थिक दृष्टि से पहले होना है, ओलंपिक में सब हमको गोल्ड मेडल चाहिए, तो इसके लिए भारतवर्ष नहीं बना हुआ है। भारतवर्ष को चाहिए कि वो सारे दुनिया को आध्यात्मिक नेत्र दे, आध्यात्मिक दृष्टि दे। इससे सारा जगत का कल्याण होगा और भारत का कल्याण भी हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आजकल भारत में सभी लोग पश्चिम देशों का नकल करने जा रहे हैं, और जिस परिस्थिति में पश्चिम देश हैं उस परिस्थिति में हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस आर्थिक सुधार के साथ साथ तथा कथित सुधार, ये वैसे नकली सुधार है, सच्चा सुधार भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको आर्थिक सुधार समझते हैं। तो लोग भूल जाते हैं भारत में कि उस आर्थिक सुधार के साथ साथ और कौन से दुर्गुण और दुर्भाग्य हमारे जीवन में आएगा। विदेशों में पैसा बहुत है, भोग की सुविधाएं बहुत हैं, परंतु वहां पर दुख उतना ही ज्यादा है। वहां लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, कौटुंबिक जीवन नहीं है, मन की शांति नहीं है, आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, खून खराबा, झगड़े और पति पत्नी के बीच में घटस्पद डाइवोर्स, ये चीजें बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चलते हैं वहां पर। वहां समाज में कोई शांति नहीं। तो अगर हमें भी उस तरह की आर्थिक तथा कथित आर्थिक सुधार हमें चाहिए, तो हमें वहां के जो दुर्गुण हैं, वहां का जो दुर्भाग्य है, उसको भी स्वीकार करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। वहां के लोग इन सब बुरी चीजों से इतना निराश हो गए हैं कि वो भारतवर्ष में आते हैं आध्यात्मिक जीवन के खोज में। इसलिए हम देखते हैं कि कितने सारे लोग अमेरिका यूरोप में वो पूर्व देशों के धर्मों को स्वीकार रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि पश्चिम के जो लोग हैं वो कृष्ण से बहुत दूर है, लेकिन कृष्ण की ओर आ रहे हैं। भारत के लोग कृष्ण के बहुत करीब हैं, लेकिन कृष्ण से दूर जा रहे हैं। ये हमारी परिस्थिति है, कितना दुर्भाग्य है। तो वो यहां आना चाहते हैं, हम वहां आना चाहते हैं। हमारे लिए हरियाली वहां दिखाई पड़ती है, उनके लिए हरियाली यहां दिखाई पड़ती है। सच्ची हरियाली कौन सी है? सच्ची हरियाली भक्ति की है। तो वो जो समझ रहे हैं वो सही है कि यहां पे हरियाली है, यहां पे आध्यात्मिक जीवन है, और यहां के लोग, भारत के निवासी गलत हरियाली को देख रहे हैं। वो सोचे हरियाली वहां पर है, वो तो झूठी हरियाली है, ऊपर ऊपर से घास है, हरियाली दिखती है लेकिन जाएंगे तो कुआं अंदर है, नीचे गिर जाएंगे सीधे। अक्सर ऐसे होता है जंगल में, जब शिकारी चलता है किसी एक ऐसे मार्ग से जाता है जहां कोई गया ना हो बहुत समय से, तो उसे लगता है कि यहां भी घास है, यहां भी हरियाली है, चलो चलते हैं। लेकिन वो उसे पता नहीं चलता कि वहां वास्तव में कुआं है, बहुत सालों से कुआं का इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए कुआं ढक गया है घास से, और वो न जानते हुए ऐसे चलता है और उसमें गिर जाता है। तो ये जो पश्चिम देशों की जो चमक धमक है, उनके जो आर्थिक सुधार का चमक धमक है, वो ऐसे हरियाली की तरह है जो कि कुएं को ढक रहा है, और उस पागल हाथी की तरह हम माया नाम के शिकारी के चंगुल में सीधे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ज्यादा से ज्यादा दुखी मिलने वाला है और कुछ नहीं। तो यहां जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको अगर हम बनाए रखेंगे, उसका पालन अगर हम करेंगे, तो बस हमारा जीवन सफल। ये भारत का धन है। आजकल जगह जगह आप देखेंगे, आप विदेश में जाकर पूछेंगे, भारत नाम कहेंगे तो लोगों को मन में क्या चित्र आएगा कि कोई गरीब आदमी है, भीख मांग रहा है। जैसे भी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, सबसे पहले इसी बात को नोट करते हैं, भिखारी सब बैठे हुए हैं। जब भी पर्यटन स्थान में जाते हैं तो वहां पर भिखारियों की लाइन लगी होती है, सब लोग भीख मांगते हैं, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में भी भारत जाके भीख मांगता है, हमको थोड़ा उधार चाहिए, हमारे ये रास्ते बनाने, हाईवे बनाने हैं, हमको 10 करोड़ डॉलर के का उधार दे दो। इस तरह से हम भी उस दूसरे देशों की तरह अभी कर्ज में कर्ज के ऊपर कर्ज लेते जा रहे हैं और ऋणी होते जा रहे हैं, और फिर इस तरह से विदेशों के गुलाम बन गए हैं। फिर जैसे वो बताते हैं उस दृष्टि से हमें जाना है, हमारी स्वतंत्रता हम खो बैठते हैं, स्वतंत्र होने के बावजूद हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वावलंबी होने के लिए आध्यात्मिक संस्कृति की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति अपना स्वाभिमान भी बनाए रखे, अपने मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरी कर सके। लोग भूल चुके हैं कि भारत गरीब नहीं है, भारतवर्ष बहुत धनी वर्ष है। इसका असली धन है आध्यात्मिक धन। लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी भारत गरीब नहीं होना चाहिए। जहां आध्यात्मिक धन है वहां आर्थिक धन भी आएगा। पुराने जमाने में जब राज ऋषि यहां पर हुआ करते थे, जैसे महाराज युधिष्ठिर, तो यहां पर प्रचुर मात्रा में धन था। प्रकृति पर्याप्त मात्रा से जो भी आवश्यकता है वो मनुष्य समाज के लिए प्रकट करा देती है। युधिष्ठिर महाराज के समय नदियों में ऊपर पहाड़ से जो खत था वो लेकर आते थे, और जमीन में इतनी सुविधा थी कि जमीन बहुत उपजाऊ थी, जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा थी, और समुद्रों में बहुत सारे मोती वगैरह मिला करते थे, धन मिलते थे आसानी से, पहाड़ों में तरह तरह के धातु मिलते थे, पेड़ों में तरह तरह के फूल और फल मिलते थे पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए, गाय, उनके स्तन हमेशा दूध से भरे हुए रहते थे, हर दृष्टि से सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो जहां लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धार्मिक पथ पर चलते हैं, वहां पर किसी भी चीज का अभाव नहीं हो सकता है। तो भारत, पूर्व का भारत, वो महान था। हम वो ट्रक के पीछे देखते हैं ना, मेरा भारत महान, है ना, वो कहने के लिए मेरा भारत महान, मेरा भारत महान था, है नहीं अभी, अभी हम भूल गए हैं उस महानता को, हम भूल चुके हैं। एक जमाना था जब भारत महान था, जबकि राज ऋषि थे यहां पर, जबकि लोग भक्ति करते थे, जब आध्यात्मिक संस्कृति थी, तब भारत महान था। अब तो भारत गुलाम है, अब तो भारत केवल नकल करना जानता है पश्चिम देशों की, हर दृष्टि से अपने ही धन को भूल चुका है, अपने ही धन को निकालकर खिड़की के बाहर फेंक दिया है भारत ने। अगर कोई व्यक्ति अपने ही घर से अपना ही धन निकाल के बाहर फेंक दे तो क्या कहेंगे लोग उससे, और फिर दूसरों से जाके भीख मांगना, अपना धन बाहर निकाल दिया और दूसरों से जाके भीख मांगना, ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन ये भारत की दशा है। इसलिए भारतवासियों को चाहिए कि अपने ही धन को पहचाने, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये भारतवासियों का कर्तव्य है, अपने धन को पहचानो, उसको स्वीकार करो और फिर दुनिया भर में जाके इसका प्रचार करो। अगर भारत आध्यात्मिक दृष्टि से सुदृढ़ रहेगा तो सारी दुनिया की सुरक्षा इसी में है। सारे पृथ्वी का केंद्र बिंदु वास्तव में भारतवर्ष है। सारे दुनिया का हित भारतवर्ष के ऊपर निर्भर है। यह एक बहुत गहरी बात है। अगर किसी दूसरे देश के आदमी से कहेंगे आप, ये थोड़ी विश्वास करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हमारा देश सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम ये देहात्म बुद्धि से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ इसलिए हम भारतवर्ष की बढ़ाई करेंगे, नहीं, क्योंकि भागवत में बताया, केवल हम नहीं कर रहे, स्वर्ग लोक के देवता भी कर रहे हैं। इस श्लोक तो ये श्लोक में तो यही बताया गया है, और यहां जन्म लेने के लिए बहुत आतुर है, लाइन में खड़े हैं सब, और कहते हैं हमारे लिए भारतवर्ष में जन्म लेना इतनी दूर की बात है, हम केवल इच्छा मात्र कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन हम जानते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे वो सुकृति नहीं है। यहां के लोग कितने भाग्यशाली हैं, न जाने क्या पुण्य क्या सुकृति किए होंगे उन्होंने पूर्व जन्मों में कि उनको भारतवर्ष जैसे भूमि में जन्म मिला। और देखिए हम लोग जिनका जन्म यहां पर हुआ है, हम सोचते हैं अमेरिका कब जाएंगे। यहां तक कि जगह जगह में लोग इस्कॉन में भी इसलिए आते हैं कि उनको बाहर जाने के लिए संधि मिले, और एक बार बाहर जाने का चांस मिल जाता है फिर भूल जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने सौभाग्य को समझ लेना चाहिए, साथ साथ भारतवर्ष में जन्म लेने के बावजूद हमें भक्तों का संग मिला, इस कौन में आके भक्ति करने की संधि मिली, कितना भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली हमें। बारंबार हमें इसका स्मरण करते रहना चाहिए। अगर हम कृतज्ञ रहें, आभारी रहें, तो इसी जीवन में हम शुद्ध भक्त हो सकते हैं। लेकिन जिस क्षण हम अपने धन को, अपने सौभाग्य को भूलेंगे कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, हमको इस कौन में आके शुद्ध भक्ति का मार्गदर्शन मिला है, भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद के ग्रंथ मिले हैं, हरि नाम मिला है, राधा गोकुलानंद मिले हैं, अगर हमने ये हमेशा याद रखा हमारे मन में, तो इसी जीवन में हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले भारतवर्ष सारे पृथ्वी को माना जाता था, लेकिन अभी केवल इस भारत को। हाँ वैसे ठीक है, परंतु अन्य जो भाग हैं फिर उसमें अलग अलग तरह के लोग बस गए, फिर थोड़े जगह में ऐसे लोग रह गए जो अलग अलग गलत संस्कृति के या संस्कृति विहीन लोग, अनकल्चर्ड जो लोग हैं वो बस गए अलग अलग जगह में, वो आध्यात्मिक संस्कृति भूल गए। आज जो भारत है, भौगोलिक भारत, राजनीति के दृष्टि से उससे बड़ा है काफी भारत वास्तव में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, ये सब भारतवर्ष में आते हैं वास्तव में। लेकिन वैसे आजकल की राजनीति की वजह से सब काफी परिस्थिति बदली हुई है, लेकिन भारत और वैसे काफी फैला हुआ है। और कोई प्रश्न ये है कि देवता गण भारत के लोगों को फल प्रदान करते हैं कर्मकांड के हिसाब से, जब वो इतना सब कर सकते हैं तो खुद यहां पर क्यों नहीं जन्म ले सकते, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। हर एक प्राणी के लिए कोई श्रेष्ठ अधिकारी होने चाहिए, व्यक्ति उनके ऊपर है ना, हमारे ऊपर देवता गण है जो हमारा सब कुछ देख रहे हैं, हम कहां जाएंगे अगले जन्म में, हमारे कर्मों के फल कैसे मिलेंगे, तो देवता के लिए कौन देखेगा, उनके ऊपर भी है ना देखने वाले कि उनका जन्म कहां होना है, वो कहां जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो जन्म लेना चाहते हैं परंतु फिर भी वो भोग इतना शक्तिशाली है कि जन्म ले भी सकते तो शायद उनको वो भोग रोक रहा है पीछे। जैसे व्यक्ति ठंडी के समय अपने बिस्तर में सोया है, कंबल ओढ़ के, जानता है अच्छा है मैं जाना चाहता हूं मंदिर मंगल आरती के लिए, लेकिन यहां का ऐश्वर्य आराम इतना अच्छा है कि वो निकल चाहता हूं, हाँ मैं इच्छा मात्र कर सकता हूं जाने के लिए, लेकिन उतनी तीव्र इच्छा नहीं है। किस वजह से? उस भोग, उस ऐश्वर्य की वजह से। तो देवलोक में भी ऐश्वर्य इतना है, भोग इतना है, इच्छा है उनकी लेकिन उतनी तीव्र नहीं है, इसलिए नहीं आ पाते। अंततः जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन समय से पहले उनके लिए आना कठिन है। लेकिन कभी कभी वो वेश बदल कर आते हैं, अदृश्य रूप में आते हैं, जैसे कि जब महाप्रभु आए थे तो आए थे अलग अलग रूपों में, और कभी कभी तीर्थ स्थानों में आते हैं। जैसे बताया जाता है कि बद्रीनाथ में 6 महीने नारद मुनि पूजा करते हैं जब मंदिर बंद रहता है, फिर देवतागण वहां पर आते हैं, उनके साथ में पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो देवतागण आते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, तीर्थ स्थानों में ही आते हैं, दर्शन वगैरह करके चले जाते हैं। अगर आपको आप उनको कहें कि हर समय पृथ्वी लोक पर रहिए, उनके लिए मुश्किल है थोड़ा है। क्योंकि साथ भोग का थोड़ा भोग की आदत हो गई है उनको, अभी इतना आसान नहीं उसको छोड़ना। जैसे एक बहुत अमीर घराने का लड़का है, उसको आके ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बोले, कठिन होगा थोड़ा उसके लिए, धीरे धीरे एडजस्ट हो पाएगा लेकिन समय लगेगा उसके लिए। उसी तरह से देवताओं को अचानक बोले यहां आइए, थोड़ा कठिन है। प्रश्न यह है कि भारतवर्ष में ही कर्म कर सकते हैं, पाप पुण्य यहीं पर हम इकट्ठा करते हैं, और तो देवलोक में क्या होता है, वो लोग जो यज्ञ करते हैं, अन्य काम करते हैं, वो किस श्रेणी में है, ये है ना प्रश्न। हाँ, ये सही है कि भारत या पृथ्वी लोक ही कर्म भूमि है। यहां पर जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, या तो पृथ्वी लोक के ऊपर मनुष्य योनि में, या तो किसी दूसरे योनि में, और अगर पाप है तो नरक लोक में भुगतना पड़ता है, पुण्य है तो स्वर्ग लोक में भुगतना पड़ता है। तो नरक लोक और स्वर्ग लोक हमारे पाप और हमारे पुण्य को का भोग करने के लिए है, बस इस कारण से है। लेकिन जब स्वर्ग लोक में है तो वो जो यज्ञ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उनकी जो तपस्या है वो भगवान विष्णु पे केंद्रित होती है। ठीक है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए दक्ष कौन थे? वो प्रजापति है, ब्रह्मा जी के पुत्र, मुख्य प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को क्या आदेश दिया गया था कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो, सारे ब्रह्मांड की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति की, अपने कई पुत्रों को जन्म दिया, फिर अपने पुत्रों से कहा अभी जाके प्रजा की उत्पत्ति करो। तो उसके लिए यज्ञ वगैरह करने आवश्यक थे, इसलिए दक्ष ने किए। किन को प्रसन्न करने के लिए? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान विष्णु के आदेश पर ही ये सारे ब्रह्मा जी